ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 13, अध्याय का नाम है सिद्ध पुरुष का आचरण, श्लोक संख्या 45। मेरे पीछे बोले स्वात्मवृत्तम मयेत्थंते सुगुप्तमपि वर्णितम् यपेतं लोकशास्त्राभ्याम्। भवान् हि भगवत् परः स्वात्मवृत्तम मयेत्थंते सुगुप्तमपि वर्णितम् यतेतं लोकशास्त्राभ्याम्। भवान् हि भगवत् परः स्वात्मवृत्तम मयेत्थंते सुगुप्तमपि वर्णितम् यतेतं लोकशास्त्राभ्याम्। भवान् हि भगवत् परः संतार्थ बोलिए स्व आत्म वृत्तम आत्म साक्षात्कार के इतिहास की सूचना मया मेरे द्वारा इत्थम इस प्रकार ते तुम्हें सुगुप्तम अत्यंत गोपनीय अपि यद्यपि वर्णितम बतलाई गई यथेतम के बिना लोक शास्त्राभ्याम। सामान्य व्यक्ति या सामान्य ग्रंथों का मत भगवान आप ही निस्संदेह भगवत परहा भगवान का भली भांति साक्षात्कार करके। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए हे प्रहलाद महाराज, आप निश्चय ही स्वरूप सिद्ध आत्मा तथा भगवत भक्त हैं। आप ना तो जनमत की परवाह करते हैं न ही तथा कथित शास्त्रों की। इस कारण मैंने आपसे निसंकोच भाव से अपने आत्म साक्षात्कार का इतिहास कह सुनाया। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले श्लोक के शब्दों को समझेंगे। ये श्लोक कौन कह रहे हैं, कौन बताएगा? ये श्लोक कौन कह रहे हैं? हाँ, सिद्ध पुरुष। कुछ सिद्ध पुरुष है जिसका नाम नहीं दिया गया है ना, प्रहलाद महाराज से बोल रहे हैं। तो उन्होंने जितना बोला है अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक है। उन्होंने काफी श्लोक बोले हैं, अंतिम श्लोक वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्व आत्मवृत्तम। स्व माने मेरा अपना, आत्मवृत्तम आत्म साक्षात्कार का इतिहास, मतलब मैंने स्वयं जो अनुभूति की है उसके आधार पर जो कुछ मैंने बताया है वो स्वयं अपने अंदर ही अनुभूति की है। अभी तो हम लोग सुनते ही हैं शास्त्रों से, साधु आचार्य से सुनते हैं, है ना। अभी हमारा अपना अनुभव नहीं है, और जैसा सुनेंगे वैसा सोचने लगेंगे। अभी हम लोग तो कच्चे हैं, है ना। अभी हमारा जो है अपना कुछ परिपक्व अनुभव नहीं है, इसलिए हमें शास्त्र प्रामाणिक शास्त्र साधु आचार्यों से सुनना होता है। लेकिन ये जो संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, इनको अपना अनुभव, इसलिए कहते हैं स्व आत्मवृत्तम, मेरा जो है अपना ही अनुभव। इतिहास, इतिहास, इतिहास का मतलब है कि बहुत समय से है? पता नहीं कितनी लंबी आयु होगी इनकी, हजारों हजारों साल से जो है सोच सोच करके और अपने दिल में जो इकट्ठा किया है अनुभव, तो वो स्वात्मवृत्तम, आत्मवृत्तम, स्व आत्मवृत्तम, मया माने मेरे द्वारा इत्थम इस प्रकार ते आपको सुगुप्तम, बहुत छिपा हुआ, किसी को नहीं बताया मैंने, किसी को नहीं बताता मैं, अपि सुगुप्तम अपि, बहुत अधिक गुप्त, हजारों हजारों सालों से किसी को नहीं बताया मैंने, अत्यंत गुप्त होते हुए भी, अभी माने भी सुगुप्तम, बहुत अधिक गुप्त होते हुए भी वर्णितम, मया वर्णितम, मया इत्थम वर्णितम, शब्द है ना, मया इत्थम इस प्रकार मेरे द्वारा वर्णित हुआ है, ते माने आपको, आपके सामने, तो आप एक विशेष व्यक्ति हैं जिनके, जिनको मैंने बताया, अपना निजी अनुभव बताया। इस भौतिक संसार में हमारी क्या स्थिति है, जिसको मैंने स्वयं विचार किया है अच्छी प्रकार से और निश्चित किया है, अपने विचारों के द्वारा निश्चित किया है, वो मैंने बताया। सुगुप्तम अपि वर्णितम, सुगुप्तम बहुत गुप्त, जिसको मैं बहुत गुप्त रखता हूं, किसी को नहीं बताता, क्यों किसी को नहीं बताता, ना किसी की इच्छा है सुनने की और ना मैं किसी को बताता हूं, लोगों की इच्छा है सुनने की, आहार निद्रा भय मैथुन, भोजन कहाँ है, निद्रा कहाँ है, सुरक्षा कहाँ है, और भोग कहाँ है, है ना, तो ना कोई मुझसे पूछता है और ना मैं किसी को बताता हूँ, सुगुप्तम अपूर्ण आपसे बताया है। व्यपेतम लोक शास्त्राभ्याम, जो लोगों के से बिल्कुल अलग है, व्यपेतम माने अलग, रहे थे लोगों के मत से, रहे थे जन मत से, रहे थे सामान्य जनता का ये मत नहीं है, व्यपेतम माने रहे थे, और शास्त्र भी जो सामान्य शास्त्र है, ये सामान्य शास्त्र, सामान्य शास्त्र सामान्य लोगों के मत से जो बिल्कुल अलग है, मेरी अनुभूतियां, ये वेदम लोक शास्त्राभ्याम, भगवान ही भगवत परा, भगवान ही, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नींद आ रही है, नींद आ रही है, ठीक से विश्राम नहीं किया ना, इसलिए नींद आ रही है, अच्छी तरह से विश्राम नहीं किया, नींद आ रही तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नींद आई तो खड़े हो जाना चाहिए, तो खड़े हो जाना चाहिए, खड़े हो जाओ, तो मैं क्या बता रहा हूँ, वो जो सिद्ध पुरुष है क्या कह रहे हैं, भगवान ही भगवत परा, आप क्या है, भगवत परायण है, भगवान के परायण है, आप भगवान के आश्रित हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप समझ सकते हैं, मत भक्त ये तत्व ज्ञान है, मेरा भक्त इसको जान सकता है, तो आप जो है ये तिल भगवान, चूंकि भगवान के परायण है इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि आप समझ सकते हैं, जो भगवान के परायण नहीं है वे इसको नहीं समझ सकते, तो यहां पर सिद्ध पुरुष ने प्रहलाद जी से ये बात कही है, है ना। अच्छा हम सुनिए प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की, जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भक्त है वो तथा कथित जनमत तथा वैदिक या दार्शनिक ग्रंथों की परवाह नहीं करता, वो जनमत मतलब लोक, विपेतम लोक और शास्त्राभ्याम, तो वैदिक या दार्शनिक ग्रंथों की, तथा कथित वैदिक ग्रंथों की, वैदिक ग्रंथों में भी जो है कई स्तर के हैं ग्रंथ, वैदिक ग्रंथों में भी कई स्तर के होते हैं ग्रंथ, है ना। त्रैगुण्य विषय वेदा, वेदों में जो है तीन गुणों का विषय है। निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, उन तीन गुणों से ऊपर उठो, तो वेदों में भोग और ऐश्वर्य की बातें कही नहीं है, है ना। तो प्रभुपाद क्या ले रहे हैं कि जो कृष्ण भक्त है वो तथाकथित जनमत और वैदिक दार्शनिक ग्रंथों की परवाह नहीं करता। यहां वैदिक दार्शनिक ग्रंथ मतलब क्या, तथाकथित वैदिक दार्शनिक ग्रंथ या वैदिक ग्रंथ है लेकिन वे निम्न धरातल के हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ बातें बताई गई हैं वेदों में, तो इनकी परवाह नहीं करता कौन, जो वास्तव में क्या है, कृष्ण भक्त है। वास्तव में कृष्ण भक्त है वो तथाकथित जनमत, कि दुनिया क्या बोल रही है, लोग कहते हैं ना कि दुनिया बोल रही है, भाई कितने परसेंट जो है लोग इस मत के हैं, लोग कहते हैं, है ना भाई आपका ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है कितने परसेंट लोग मानते हैं, 1% भी लोग नहीं मानते हैं तो फिर क्या फायदा, 1% भी लोग नहीं मानते हैं, है ना। भगवान ने क्या उत्तर दिया, हीरे के व्यापारी कम होते हैं, असली हीरे के ग्राहक कम होते हैं, है ना। एक दूसरा भी उत्तर दिया प्रभुपाद ने, प्रभुपाद ने दूसरे उत्तर दिया, एक दूसरा उत्तर दिया, आकाश में जो तारे हैं है ना उनमें चंद्रमा एक है, कितने परसेंटेज है चंद्रमा, चंद्रमा का परसेंटेज क्या है, है? कुछ भी नहीं है। एक चंद्रमा पूरे रात्रि का अंधकार दूर करता है और इतने तारे लाखों लाखों तारे हैं मिलकर के भी ना, तो परसेंटेज से क्या है, परसेंटेज से क्या महत्व। तो एक सज्जन ने मुझसे बहुत तर्क किया था इस बात पर कि भाई ये जो कृष्ण जी का जो मत है, गीता का मत है जिसको आप मानते हैं, तो दुनिया में जो है कितने परसेंट में जो मान रहे हैं, इसलिए हम नहीं मानेंगे, 1% भी नहीं है लोग, है ना। तो हमने सब कुछ बताया कि भाई हीरे का जो कीमत है वो नहीं माने, लेकिन बाद में जब हमने देखा कि प्रभुपाद ने जो है ये उदाहरण दिया तो फिर मुझे लगा कि ये उदाहरण जो है सबसे अच्छा है जवाब के लिए, जवाब देने के लिए कि चंद्रमा का क्या परसेंटेज है। एक चंद्रमा आकाश में लाखों तारों के बीच में एक चंद्रमा का क्या परसेंटेज है, लेकिन एक चंद्रमा जो है पूरे अंधकार को दूर करता है, सब लाखों तारे मिलकर के भी नहीं करते अंधकार को दूर। इसलिए सामान्य जनता के मत का कुछ भी महत्व नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए रूपा ने कहा कि हम सामान्य जनता के मत की जो है परवाह नहीं करते कि सामान्य जनता क्या कहती है। आजकल तो यही है वोटिंग सिस्टम, सामान्य जनता वोट देगी, उसको जो है बनाया जाता है, शासक बनाया जाता है, अधिकारी बनाया जाता है, उसको ऊंचा पद दिया जाता है जनमत। लेकिन ये विधि नहीं है, है? तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि तथाकथित जनमत और वैदिक या दार्शनिक ग्रंथों की परवाह नहीं करता। आगे प्रहलाद महाराज ऐसे ही भक्त हैं जिन्होंने अपने पिता तथा उन्हें शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अपने तथाकथित शिक्षकों के झूठे उपदेशों का उल्लंघन किया। उनके उपदेशक या शिक्षक का नाम क्या था, प्रहलाद के जो शिक्षक थे संड और अमर्क, है ना, तो उनके भी उपदेशों का उल्लंघन किया प्रहलाद जी ने। आगे अभी तो वे अपने गुरु नारद मुनि के आदेशों का पालन करते रहे, इस तरह वे सदैव निर्भीक भक्त बने रहे, निर्भीक ही प्रहलाद जी ने, निर्भीक रहे नहीं, जहां उनको जो है डांटा जाता था तो वो चुप हो जाते थे, तो समय स्थान परिस्थिति के अनुसार फिर चुप रहना पड़ता है ना। क्योंकि जब संड अमर्क उनके जो गुरु थे उन्होंने पूछा कि प्रहलाद ये तुम्हारी उल्टी बुद्धि कैसे हुई, तुम्हारी उल्टी बुद्धि कैसे हुई कि तुम जो है कृष्ण की भक्ति का बखान करने लगे, कृष्ण की भक्ति को श्रेष्ठ मानने लगे, ऐसी उल्टी बुद्धि तुमको किसने दी, कहाँ से मिली तुमको ऐसी उल्टी बुद्धि। तो प्रहलाद जी ने क्या कर दिया, हंस पड़े है? बोले कि वो जो भगवान सबके हृदय में है, बुद्धि प्रदान करते हैं, वही भगवान वजह की बुद्धि प्रदान करते हैं, उतर दिया। तो वो फिर बोले अरे लाओ डंडा, अब इसको सुधारना पड़ेगा। प्रहलाद जी के सामने बोले लाओ डंडा, अब इसको सुधारना पड़ेगा। तो फिर प्रहलाद जी को क्या करना पड़ा, चुप रहना पड़ा, ऐसा मैं तो कुछ नहीं बोल सकते है ना। लेकिन हाँ फिर भी निर्भीक बने रहे। जब वो चले जाते थे कक्षा से बाहर अपने घर के काम में चले जाते थे, तो बालकों को बुला करके सिखाने लगते थे और बताते थे कि ये इनका जो है सिद्धांत सब उल्टा है और कृष्ण भक्ति का सिद्धांत सच्चा है, इसको सीख। और जितने बच्चे थे वो भी गुरु के सामने विरोध तो नहीं करते थे। जब गुरु लोग आते थे तो विरोध तो नहीं करते थे, लेकिन अब उनकी रुचि नहीं गुरु के उपदेशों में, वो भी ऐसे करते। जितने बच्चे थे तब सन अमर को पता चला कि अरे इसने जो है सब बच्चों को बिगाड़ दिया। तो समय स्थान के अनुसार कभी कभी विरोध ना करके क्या करना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि सत्य निर्भीक बने रहे। आगे बुद्धिमान भक्त का यही स्वभाव होता है। श्रीमद् भागवत की शिक्षा है यज्ञ संकीर्तनताय रदन्ति सुमेधसः। जो वास्तव में अत्यंत बुद्धिमान है, उसे अपने को कृष्ण का नित्य दास मानते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हो जाना चाहिए और भगवान नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। तो प्रभुपाद क्या करें, जो अत्यंत बुद्धिमान है, तो जिससे मैं भगवत है यंत ही सुमेत सा, जो बहुत बुद्धिमान है, तो वो जनता की परवाह नहीं करते। जनता में क्या है, मूर्ख, सामान्य जनता क्या है, मूर्ख है ना। द मेजोरिटी कंटेंस क्या बोलते हैं, मेजोरिटी कंटेंस फूल्स ना, ये कहावत है ना, क्या बोलते हैं, द मेजोरिटी कंटेंस, मेजोरिटी ऑलवेज कंटेंस फूल्स, ये कहावत है, कहा जाता है ना, द मेजोरिटी ऑलवेज कंटेंस फूल्स। बहुत ही संसार, बहुत ही इट इज फुलिश टू बी वाइज इन दिस असेंबली ऑफ फूल्स। तो बौद्ध संसार बद्ध आत्माएं ना, अज्ञान, ये अज्ञान का संसार है। ये भौतिक संसार क्या है, अज्ञान से भरा हुआ है। इसलिए यहां पर इस भौतिक संसार में जो है लोगों का मत लेना, लोगों का मत पूछना, लोगों का मत जानना, भाई आपके विचार से जीवन का क्या लक्ष्य है, आपके विचार से जीवन का क्या लक्ष्य है, महामूर्ख, एक से एक बढ़कर के मूर्ख है ना। आप जो है अगर इस तरह से लोगों का मत लें तब अपना निश्चय करें कि भाई मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कोई जरूरत नहीं है, है? जो बहुत बुद्धिमान है जो जीवन का लक्ष्य निश्चित करते हैं, है? है? हमें क्या करना है, त्यक्तो अदेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽयम, देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करना है, कृष्ण के धाम में जाना है। ये संसार भौतिक संसार रहने के लिए नहीं है। लेकिन मूर्खों का सिद्धांत क्या है, मूर्खों का सिद्धांत है कि ये मत सोचो कि संसार में कोई दुख है, जितना सुख हो सके सुख भोगने का प्रयास करो और भूल जाओ कि आपने दुख भोगे है ना। तो आजकल ये चली रहा है सिद्धांत, जैसे खरगोश है तो आंखें बंद कर लेता है, जब शेर आता है सामने भाग सकता है, अपनी रक्षा कर सकता है शेर से, लेकिन आंखें बंद कर लेता है ये सोच करके कि कोई शेर नहीं है और शेर मार डालता है उसको, है ना। उसी प्रकार से अगर उपाय है, मनुष्य के जीवन में उपाय है कि आप बच सकते हैं तो अपने रक्षा करो और भागो निकलो भागो, उत्तिष्ठत है जागृत है प्राप्य वनान्य बोधत है। शास्त्र कहते हैं उठो जागो भागो, जागो भागो जागो भागो जागो भागो, है ना। मकान में आग लगी है तो सोते हुए से जागो भागो जागो भागो जागो भागो, ये आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन इसी का है, जागो भागो, है ना। लेकिन जो सो रहे हैं कहते क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारी नींद को, इतनी बढ़िया नींद आ रही है, हैं, और सपना देख रहे हैं कितना बढ़िया सपना है, हैं, पिकनिक मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे सपने को। और मकान में आग लगी है, हम कहते हैं हम कितना अच्छा सपना देख रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हरे कृष्ण आंदोलन ये डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए है। तो जो मूर्ख लोग हैं तो जो है बुरा मानते हैं कि ये लोग जो है मतलब कैसे उत्पाद मचा रहे हैं, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ जो है प्रभुपाद बता रहे हैं कि जन्म की परवाह नहीं करना है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि विपेतम लोक शास्त्राभ्याम, इस श्लोक का हिंदी में प्रत्यानुवाद है, ये विष्णु प्रिया देवी ने लिखा है, आत्मकथा ये है मेरी अति गुह विषय जानो, लोक और शास्त्र से परे ही इसको प्रियवर तुम जानो, तुम अनन्य प्रेमी प्रभु के इस कारण है तुम्हें कही, तब भक्ति के कारण ही तुमको है ये प्रकट करी। तो गीता में भगवान ने बताया है, भगवान ने भी निंदा की है, जो वेदों के कर्मकांड में बताए गए सिद्धांत हैं तो भगवान भी निंदा करते हैं। याम इमाम पुष्पिदाम माजम प्रवदन्ति वपश्चिता, शास्त्र तो हैं, वैदिक शास्त्र तो हैं, इन जो कर्म कांड के शास्त्र हैं तो उनमें क्या बताया गया है, याम इमाम पुष्पिदाम माजम, वो पुष्पिता वाणी है वेदों की, प्रवदन्ति वपश्चिता, तो वो जो मूर्ख लोग हैं वो वेदों की पुष्पिता वाणी को ही दोहराते हैं। वेदवाद रता पार्थ, और वेदवाद में रत है कि ये तो वेदों के वाक्य हैं, तो वेदों में बताया गया है, नानद स्थिति वादिना, और वेदों में इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, जबकि इससे आगे भी है वेदों में। तो वेदों की इन बातों में जो है वो इतने आसक्त हैं, नानद स्थिति वादिना, कि वेदों में और आगे की कुछ बात ही नहीं। काम आत्माना, तो उनकी आत्मा जो है काम में फंसी है, भोग में फंसी है, काम आत्मा होना स्वर्ग पड़ा, और स्वर्ग को ही जो है सर्वश्रेष्ठ मानने वाले, काम आत्माना स्वर्ग पड़ा, जन्म कर्म फल प्रदान, काम आत्माना स्वर्ग पड़ा जन्म कर्म फल प्रदान, तो जन्म और कर्म रूपी जो है फल प्रदान करने वाले, जन्म कर्म फल प्रदान, क्रिया विशेष बहुलाम, जिसमें बहुत विशेष क्रियाएं करनी पड़ती हैं, भोग ऐश्वर्य गति, भोग ऐश्वर्य की गतियां प्राप्त करने के लिए, है ना। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम क्रिया प्रहित चेतसाम, तो भोग ऐश्वर्य में आ सकते हैं, और उस वेदों की वाणी से उनका चित्त हरण हो चुका है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो नाम विधि, तो उनकी जो बुद्धि है वो समाधि में यानी कृष्ण की भक्ति में स्थिर नहीं होती है, ना। तो भगवान भी निंदा करते हैं इस बात की। महाभारत की रचना करके व्यासदेव भी संतुष्ट नहीं हुए, महाभारत भी शास्त्र है, तो महाभारत में भी भोग ऐश्वर्य की कई बातें लिखी हुई हैं, बहुत सी बातें लिखी हैं, तो महाभारत शास्त्र की रचना करके भी व्यास जी संतुष्ट नहीं हुए, जब तक उन्होंने श्रीमद् भागवत नहीं लिखा तब तक संतुष्ट नहीं हुए। तो यहां पर बताया ना लोक शास्त्र अभियान, तो ऐसे शास्त्रों से जो है मेरी जो अनुभूति है वो अलग है। विपेतम जो सिद्ध पुरुष हैं वो कह रहे हैं कि शास्त्रों से मेरी अनुभूति अलग है, यहां तक कि रामायण में भी जो है स्वर्ग की बात बताई जाती है, वाल्मीकि रामायण में जहां भी लिखा हुआ है स्वर्ग की बात बताई गई कि स्वर्ग प्राप्त होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है, तो उसमें भी मतलब स्वर्ग में और वैकुंठ में क्या अंतर है ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, हालांकि वो भगवान राम का चरित्र है तो वो बहुत दिव्य है, और उससे शुद्धि होती है, आत्मशुद्धि होती है, लेकिन भोगों का भी वर्णन मिलता है, रामायण में भी भोगों का वर्णन मिलता है, और स्वर्ग प्राप्ति की बात जो है बताई जाती है रामायण में भी, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। बाइबल में, कुरान में भी क्या लिखा है, बाइबल में लिखा है आपको स्वर्ग मिलेगा, हेवन, उसका वर्णन भी है स्वर्ग में क्या है, बहुत सुविधाएं हैं, इंद्रिय भोग की बहुत सुविधाएं हैं, आपको स्वर्ग मिलेगा। कुरान में भी जन्नत लिखा हुआ है, जन्नत मिलेगा, वहां भी इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं हैं, कहीं भी नहीं है कृष्ण प्रेम की बात है नहीं कहीं। हाँ उसमें ही बताते हैं कि भाई स्वर्ग में भगवान है और आप जो है वहां पर जाइए, लेकिन फिर भी वहां भी जीवन की सुविधाओं की बात बताई गई है, वो भगवान की सेवा की बात नहीं बताई गई। कुरान में भी जन्नत की बात बताई गई है, जन्नत है, और वहां पर अल्लाह है, अल्लाह है, खुदा है ना, ये तो भी इंद्रिय भोगों की बात बताई गई है, कोई वो नहीं बताएंगे कि भगवान के साथ आप कैसे प्रेम कर सकते हैं और कैसे आप उनकी सेवा कर सकते हैं, ये बातें नहीं बताएंगे। और इसमें एक श्लोक है भी, ना असत शास्त्र सज्जित है, ऐसे असत शास्त्रों में आसक्त नहीं होना चाहिए। असत शास्त्र का मतलब ये भी है, जैसे समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं, इनको भी लोग शास्त्र मानते हैं, आप समझ रहे हैं, इनको भी लोग शास्त्र मानते हैं, तो लोग शास्त्र का मतलब है सामान्य जनता के मत में यही शास्त्र है, जिनमें ये सब जो है व्यर्थ की बातें लिखी है ना, जिसमें व्यभिचार, जुआ, नशा, ये सब बातें लिखी हैं, उनको भी शास्त्र मानते हैं लोग, उनको भी प्रमाणिक मानते हैं, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र भी शास्त्र होंगे, ये भी लोक शास्त्र है ना। तो यहाँ पर बताएगा विपेतम लोक शास्त्राभ्याम है ना, लेकिन जो लोक शास्त्र है उनसे अलग दूसरे शास्त्र हैं जो पारलौकिक शास्त्र हैं, जो भगवद गीता है, ये श्रीमद् भागवत है, तो ये शास्त्र कैसे हैं, ये दिव्य ग्रंथ हैं, तो अपौरुषेय कहलाते हैं। और ये प्रीतम लोक, लोक का मतलब सामान्य जनता, सामान्य जनता के मत से अलग है, मेरा जो अनुभव है सामान्य जनता के मत से अलग है। सामान्य जनता के लिए भगवान क्या कहते हैं, अभिजानन्ति माम मूढ़ा मानसीम तनुमानसतम, भगवान गीता में कहते हैं कि मूर्ख लोग जो है मुझे मानसी तनु मनुष्य शरीर के आश्रित मानते हैं, तो मूर्ख लोग हैं जो मनुष्य शरीर के आश्रित मानते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानसीम तर्मासितम परम भावम अजानन्तो भूत महेश्वरम, मेरे परमेश्वर के भाव को नहीं जानते। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा, उनकी आशाएं व्यर्थ हैं, उनके कर्म व्यर्थ हैं, उनकी चेतना व्यर्थ है, मोघासा मोघ कर्माणो उनका ज्ञान व्यर्थ है। राक्षसी मासुरीम चाहे प्रकृति मोहिनी इंद्रता, उनकी प्रकृति कैसी है, राक्षसी है, आसुरी है या मोहिनी है, तो भगवान भी निंदा करते हैं ऐसे सामान्य लोगों की, और ऐसे शास्त्रों की भी निंदा करते हैं है ना। भगवान वैदिक शास्त्रों की भी निंदा करते हैं जहाँ कर्मकांड की बातें बताई गई भगवान स्वयं, लेकिन फिर भगवान कहते हैं कि वेदेश सर्वे रामे वेद्यो, समस्त वेदों के द्वारा कहीं जानने योग्य हूँ, तो वेदों में बताई गई हैं ये सब बातें, कर्मकांड की बातें बताई गई हैं, जैसे रामायण में भी स्वर्ग की बात बताई गई है, लेकिन उद्देश्य यही है कि आप स्वर्ग ना जाकर के कहाँ जाइए, भगवान के धाम में जाइए, उद्देश्य यही है, लेकिन सामान्य जनता चूंकि नहीं समझती है तो उनको जो है समझाने के लिए या प्रलोभन देने के लिए ये बातें बताई जाती हैं। इस विषय में चैतन्य भागवत में एक घटना है, तो वो मैं जो है आपको सुनाना चाहता हूँ। भगवान चैतन्य नित्यानंद प्रभु के साथ जा रहे हैं शांतिपुर, आचार्य अद्वैत आचार्य के पास मिलने के लिए, तो आधे रास्ते पर गंगा जी के समीप ललितपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक गृहस्थ सन्यासी रहता था। उसका घर गंगा के समीप रास्ते नहीं था। उसे देखकर प्रभु ने नित्यानंद प्रभु से पूछा, जानते हो ये किसका स्थान है, कहो तो कौन इसमें रहता है। नित्यानंद प्रभु बोले, प्रभु ये किसी सन्यासी का स्थान है। प्रभु बोले, यदि भाग्य हो तो उनके दर्शन करें। भगवान कहते हैं, अगर भाग्य हो तो दर्शन करें। भगवान जो है गृहस्थ का अभिनय कर रहे हैं तो सौभाग्य मानते भी कोई सन्यासी मिले तो उसका दर्शन करें। हंसते हंसते दोनों प्रभु सन्यासी के स्थान पर गए। जाकर श्री चैतन्य ने सन्यासी को प्रणाम किया तो ब्राह्मण पुत्र गौरांग का सुंदर सर्वांग सुंदर रूप देख करके, प्रसन्न मुख देख करके सन्यासी प्रसन्न होकर बहुत आशीर्वाद देने लगा। तुम्हें धन मिले, तुम्हारा वंश बढ़े, सुंदर स्त्री के साथ तुम्हारा ब्याह हो और तुम्हें बहुत विद्या प्राप्त हो। प्रभु बोले, गोस्वामी ये तो आशीर्वाद नहीं है, ऐसा कहो कि तेरे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा हो। भगवान बोले, भगवान तो छोटे बालक हैं, ज्यादा उम्र का सन्यासी है। तो भगवान बोले कि आप ऐसा आशीर्वाद दो कि कृष्ण भक्ति मिले। विष्णु भक्ति का आशीर्वाद ही अक्षय है, अव्यय है। जो आशीर्वाद आपने दिया वो तो हे गोसाई आपके योग्य नहीं है, आप ऐसे सन्यासी के लिए उचित नहीं है ऐसा आशीर्वाद देना। सन्यासी हंसता हुआ बोला, जो पहले सुना था आज उसका साक्षात प्रमाण मिल गया। अच्छी बात कहने पर लोग लाठी लेकर दौड़ते हैं। कितना बढ़िया आशीर्वाद दिया मैंने। इस विप्र कुमार का भी ऐसा ही व्यवहार है, इस ब्राह्मण के लड़के का ऐसा ही व्यवहार है। भगवान को बोल रहा है ब्राह्मण का लड़का, देखो निंदा कर रहा है मेरे आशीर्वाद की, मैंने इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया। इस विप्र कुमार का ऐसे ही व्यवहार है, मेरे परम संतुष्ट होकर धन प्राप्ति का वरदान दिया, उपकार मानना तो दूर रहा उल्टा मुझे दोष देने लगा है। सन्यासी फिर बोला, ब्राह्मण कुमार सुनो, तुमने मेरे आशीर्वाद की निंदा क्यों की, उससे बुरा कैसे बताया। अरे पृथ्वी पर जन्म लेकर जिसने भोग विलास नहीं किया, उत्तम कामनी जिसके पास ना हुई, धन ना हुआ, तो उसका जीवन का क्या लाभ है। ऐसे धन का वरदान देने पर तुम लज्जा मानते हो। अच्छा तुम्हारे शरीर में विष्णु भक्ति हो भी गई तो धन के बिना क्या खाओगे बताओ तो मुझे। विष्णु भक्ति से क्या होगा, कहता है। सन्यासी के वचनों को सुनकर प्रभु हंसे, अपना हाथ ललाट कर रखा। सन्यासी की मनोवृत्ति जानकर प्रभु ने माथे पर दुखी धोकर हाथ मारा। हे भगवान, कैसे सन्यासी के घर हम आ पहुंचे। इस प्रसंग के क्षण से महाप्रभु सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि भक्ति के बिना कुछ नहीं चाहना। महाप्रभु बोले, हे सन्यासी गोसाई सुनो, जो मैं खाऊंगा अपने भाग्य में जो है वो अपने आप ही मिल जाएगा। और सुनो, धन और वंश के लिए संसार कामना करता है, फिर लोगों का धन और वंश नाश क्यों हो जाता है बताओ तो सही। जर को कोई नहीं चाहता, फिर क्यों जर आकर शरीर को पीड़ा देता है। सुनो गोसाई सुनो, इसका कारण है कर्म। बिरले कोई महानुभाव ही इसका मर्म जानते हैं। वेद भी स्वर का वर्णन करता है, वेदों में स्वर का वर्णन है और लोग सब कहते हैं, परंतु इसे केवल मूर्खों के ऊपर वेद की करुणा समझो। कारण कि लोगों को विषय सुख में बड़ा संतोष है, ऐसी चित्ती वृत्ति को समझ करके ही वेद स्वर की बातें कहते हैं, इसमें वेद का क्या दोष है। वेद ने कहा गंगा स्नान से हरि नाम से धन और पुत्र मिलते हैं, ये सुनकर लोग ऐसा आचरण करने लगते हैं। आप समझ रहे, हरि बोल, आंखें बंद हैं, हरि बोल, आंखें को बंद करें, आंखें नहीं बंद करें, आंखें नहीं बंद करना, आंखें बंद करने की विधि नहीं है। तो मैं क्या बता रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, ये वेद का क्या दोष है। लोग चाहते हैं तो वेद कहते हैं, वेद का तो उद्देश्य है कि गंगा स्नान से आप शुद्ध होंगे तो आपकी सब कामनाएं दूर होंगी, बहुत कामनाएं दूर होंगी। लेकिन वेद क्या कहते हैं, गंगा स्नान से धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा। तो वेदों की तो चाल है आपको शुद्ध करना चाहते हैं। वेद ने कहा कि गंगा स्नान से हरि नाम से धन और पुत्र मिलते हैं, ये सुनकर सब लोग ऐसा आचरण करने लगते हैं कि हाँ भाई धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा। जिस किसी प्रकार से गंगा स्नान करने और हरि नाम लेने से वस्तु शक्ति के प्रभाव से सहज में ही भक्ति हो जाएगी। तो वे नहीं बताते कि भक्ति मिलेगी, लोग भक्ति नहीं चाहते। वेद इस अभिप्राय को मूर्ख नहीं समझते और श्री कृष्ण भक्ति को छोड़कर विषय सुख को भजते हैं। गोसाई जरा विचार कर भला बुरा समझो, श्री कृष्ण भक्ति के बिना और दूसरा कोई वरदान नहीं है। कौन कह रहे? चैतन्य महाप्रभु कह रहे। सन्यासी को लक्ष्य करके शिक्षा गुरु भगवान ने वेद के प्रमाण पर भक्तियों की शिक्षा दी। प्रभु की बात सुनकर सन्यासी हंसने लगा और मन में कहने लगा, ऐसा लगता है कि मंत्र के कारण ये ब्राह्मण पागल हो गया है। पागल व्यक्ति जो है अपने को ठीक समझता है और जो ठीक है उनको पागल समझता है, सोचता है मंत्र दोष के कारण ये ब्राह्मण पागल हो गया है। ऐसा लगता है इसके साथ का सन्यासी नित्यानंद इस ब्राह्मण कुमार की बुद्धि को पलटकर इसे बहकाकर कहीं ले जा रहा है। नित्यानंद तो सन्यासी है, तो ये सन्यासी जो है इसको अच्छा अच्छा भला लड़का है, गृहस्थ जीवन बिताए और सुख भोग करे, तो नित्यानंद सन्यासी बहका करके इसको घर से दूर ले जा रहा है। तो ऐसा मन में सोचा उसने। फिर वो सन्यासी स्पष्ट बोला, देखो अब ऐसा जमाना आ गया है कि मैं बालक के आगे कुछ नहीं जानता। क्या बोला? ऐसा जमाना आ गया है कि बालक के आगे मैं कुछ नहीं जानता। मुझे उपदेश दे रहा है, मैं पृथ्वी भर में घूमा हूं, अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, बद्री का आश्रम, गुजरात, काशी, गया, विजयनगर, सिंगल द्वीप, सभी पूर्वियों में हुआ हूं, फिर भी मैं तो भले बुरे को जान न पाया। अभी दूध मुहा बालक मुझे सिखा रहा है। तब नित्यानंद हंसकर बोले, गोसाई जी सुनो, एक बालक के साथ तर्क विचार करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी महिमा को अच्छी तरह जानता हूं। मेरी तरफ देखकर तुम सब क्षमा कर दो। अपनी प्रशंसा सुनकर सन्यासी ने संतुष्ट होकर झटपट बड़े आनंद के साथ भोजन करने के लिए कहा, चलो आओ आओ भोजन करो। नित्यानंद जी बोले, विशेष कार्य हम जाएंगे। हाँ कुछ दे दो, स्नान करके मार्ग में खा लेंगे। सन्यासी बोला, स्नान यहीं कर लो, कुछ खा पीकर ठंडे होकर चले जाना। पापियों के उद्धार के लिए दोनों प्रभु का अवतार हुआ है। अतः दोनों प्रभु सन्यासी के घर ठहर गए और गंगा स्नान से मार्ग की थकावट दूर हो गई। फिर दोनों फलाहार करने को बैठे। अब उसका अन्न थोड़ी खाएंगे ऐसे सन्यासी का, तो फलाहार करने को बैठे। दूध, आम, कटहल आदि श्री कृष्ण को भोग लगाकर दोनों प्रभु सन्यासी के सामने प्रसाद पाने लगे। और वो सन्यासी था वामपंथी, मदिरा पीता था। नित्यानंद जी संकेत द्वारा मदिरा पीने को कहने लगा, सुनो श्रीपाद, कुछ आनंद लंग। आप जैसे अतिथि फिर मुझे कहां मिलेंगे? और नित्यानंद जी सब कुछ जानते थे, 20 साल तक घूमे थे ना, सब जानते थे। मन में समझ गए सन्यासी शराबी है ये। सन्यासी बार बार आनंद लंग कहने लगा। नित्यानंद जी बोले, हम तो भाग जाएंगे। और कामदेव के समान दोनों की सुंदर रूप को देखकर सन्यासी की स्त्री बड़े एकाग्र मन से उन दोनों को देख रही थी। अच्छे सुंदर पुरुष हैं, तो सन्यासी की स्त्री इनको देख रही। उसने सन्यासी पति को टोककर कहा, भोजन के समय तुम क्यों बाधा डाल रहे हो? वो समझ रही थी कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो जो है इनका रूप देख रही थी। तब प्रभु ने कहा, ये सन्यासी जी आनंद आनंद क्या कह रहे हैं? नित्यानंद बोले, मदिरा मदिरा को बोल रहे हैं आनंद। ये सुनते ही विश्वामित्र ने श्री विष्णु कहते हुए आचमन किया, तुरंत ही भागे और गंगा में कूद पड़े, भाग गए दोनों। लेकिन फिर भी उसका जो है उद्धार किया, गौरनेता इतने कृपालु हैं, उसका भी उद्धार किया। लेकिन जो वैष्णवों की निंदा करते हैं उनको छोड़ करके सबका उद्धार किया, इतने पापियों का भी उद्धार किया गौरनेता ने। ये मतलब ये कथा है, तो कहने का मतलब ये है कि सामान्य जनता का जो मत है उसका कोई महत्व तो नहीं है। तो आज का जो श्लोक है इसमें वो बता रहे हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं वो प्रहलाद जी को बता रहे हैं कि मैंने अपनी जो बात बताई है वो आपसे ही बताई है, सबसे नहीं बताई है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ जी,
हरे कृष्ण। जैसे आज का आखिरी श्लोक था जो सिद्ध पुरुष ने कहा, और ओरिजिनली जो प्रश्न पूछा था प्रहलाद महाराज ने, उनसे प्रश्न ये पूछा था कि आप इतने मोटे कैसे हैं, तो उन्होंने फिर भौतिक जीवन का वर्णन किया, एक मृग का उदाहरण दिया, मधुमक्खी का उदाहरण दिया, अजगर का उदाहरण दिया। तो जो उनके प्रश्न हैं और जो उन्होंने उत्तर दिए, इसमें ऐसा कोई संबंध
नहीं? प्रहलाद जी ने जो प्रश्न किया था उसी का ही उत्तर दिया उन्होंने। प्रहलाद जी ने प्रश्न किया था कि आप इतने अच्छे हैं, शरीर हट्टा कट्टा है, तो आप जो है सुख भोग के जो है इस शरीर से जो है आप फिर इंद्रिय तृप्ति क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका ही प्रश्न था कि आपका शरीर जब बढ़िया है, बलिष्ठ है, है सब प्रकार से है, कोई व्यक्ति जो है अपने शरीर को बनाता है ना, बॉडी बिल्डिंग, अच्छी बॉडी बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? ताकि इंद्रिय तृप्ति करें। तो प्रहलाद जी ने प्रश्न किया था, तो फिर आप जो है मतलब लोग फिर जब तक अच्छा शरीर होता है तब तक अच्छा व्यापार करो, घर बनाओ, मकान बनाओ, स्त्री है, पुत्र है, धन है, ये सब इकट्ठा करो, शरीर बढ़िया है जब तक है। प्रहलाद जी का ही प्रश्न था ना कि नहीं? नहीं है, प्रहलाद जी का ही प्रश्न है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? जब इतना बढ़िया शरीर बना हुआ है तो करो, अच्छा बिजनेस करो, घर मकान धन पुत्र व्यापार, है ना, व्यापार बढ़ाओ, फैक्ट्री बनाओ, ये करो वो करो, क्यों, क्या विचार है? जब अच्छा शरीर है तो सब करो, है जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं? तो प्रहलाद जी ने सामान्य लोगों की दृष्टि से ये प्रश्न किया था कि सामान्य लोग ये कहते हैं, अरे देखो इतना बढ़िया जवान लड़का, पढ़ा लिखा लड़का है ना, और हरे कृष्णा में जो है आ गया, जीवन बर्बाद कर दिया। इतना अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, सुंदर लड़का है, शादी करो, हाँ बढ़िया सुंदर स्त्री से शादी करो, घर बसाओ, मकान बसाओ, समाज है और जो है मित्रता है ना, इस तरह जो है मतलब होना चाहिए, हाँ फिर क्या फायदा? इतना बढ़िया शरीर मिला, सुंदर शरीर मिला, है मनुष्य जीवन मिला, है ये सब जो है अगर नहीं किया तो जीवन बर्बाद कर रहे हो, हरे कृष्णा में आकर के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, क्यों, क्या विचार है? सब लोग हरे कृष्ण में आकर के अपना जीवन बर्बाद करते हैं, अभी जवान है, अभी अच्छा है ना, खूब जो है भोगने का और जो है अपना सब अपना यश है, सम्मान है, अपना बढ़ाओ, सब कुछ करो, हरे कृष्णा में आकर के क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, क्यों? सामान्य लोगों का ये प्रश्न है। तो प्रहलाद जी ने ये प्रश्न किया था कि नहीं, है ना आपका प्रश्न?
धन्यवाद भैया, आपने बहुत सुंदर कथा की। मैं आपसे पूछना चाहता था, जैसे इसमें वो अब्दुल प्रहलाद महाराज को कह रहे हैं कि आप जो है लोग
सब कुछ नहीं पड़ रहा है, नहीं जोर से बोलो।
तो थोड़ी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे श्लोक में आता है कि वो अब्दुल ब्राह्मण जो है वो प्रहलाद महाराज को कह रहे हैं कि आप लोक मत या शास्त्र तथा कथित शास्त्र मत को नहीं मानते, जैसे श्लोक में हम चर्चा भी की।
हाँ वैसे श्लोक में जो है प्रभुपाद ने इस तरह से माना है, लेकिन दूसरा अर्थ ये भी है, यद्यपितम लोक शास्त्राभ्याम स्वातंत्रम, कि मतलब मेरा जो अनुभव है वो लोक मत से और शास्त्रों के मत से अलग है, लेकिन यद्यपितः लोक शास्त्राभ्याम अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो प्रहलाद जी के लिए आ जाएगा। तो प्रभुपाद ने इस तरह से दोनों तरह से अर्थ निकलता है, प्रहलाद जी के लिए भी ये बात है और मेरे लिए भी ये बात है, सिद्ध पुरुष बोल रहे हैं। हाँ
लेकिन हम लोग देखते हैं कि ऐसे कुछ घटनाएं देखते हैं, लीलाएं देखते हैं, जिसमें ऐसे कुछ घटनाएं देखते हैं जिसमें महाप्रभु ने या महाजनों ने लोक विचार को भी मत में रखा कि लोग उनके बारे में क्या मत लेते हैं, क्या सोचते हैं। तो किस स्थिति में एक भक्त लोक विचार का का मत नहीं मानता और किसमें मानता है।
हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है इनका। सन्यासी के लिए जो है भगवान चैतन्य बहुत चिंतित थे कि लोगों की दृष्टि में सन्यासी का जो चरित्र है वो बहुत पवित्र होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है सन्यासी के जो है उपदेश को सुनना चाहते हैं और लोगों की नजरों में सन्यासी जो है मतलब चूंकि बिल्कुल विरक्त है ना, तो उसके चरित्र में कोई दोष ना दिखाई दे, लोगों की नजरों में सन्यासी के चरित्र में कोई दोष ना दिखाई दे। तो भगवान चैतन्य इस बात का जो है विचार करते हैं और प्रभुपाद ने भी इसी बात की चर्चा की है कि हम जो है इस समाज में कुछ लोगों का ऐसा दल बनाना चाहते हैं जो कि मतलब शुद्ध चरित्र के हों, तो आप लोगों का जो चरित्र है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए, विशेष रूप से जो पराई स्त्रियों के संबंध में हमारा जो व्यवहार है चरित्र है कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को किसी प्रकार की शंका पैदा हो, है ना। तो इससे क्या होगा कि सन्यासी का चरित्र अगर लोगों की नजरों में गिर गया तो फिर लोग जो है उसकी शिक्षाओं का जो है पालन नहीं करेंगे। तो मुख्य बात तो ये है कि प्रचार में फिर बाधा पड़ेगी, हमारे प्रचार में बाधा पड़ेगी अगर हमारा चरित्र जो है इस मामले में कुछ अगर गलत हुआ है तो हमारे प्रचार में बाधा पड़ेगी। और भक्ति विनोद ठाकुर के समय में चैतन्य संप्रदाय बहुत दूषित हो गया था, जो बहुत दूषित लोग थे वे अपने को चैतन्य के संप्रदाय का मानते थे और वे जो है नशा भी व्यभिचार भी वो उनका जो है सामान्य जीवन था। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको जो है वैष्णव के संप्रदाय से अलग किया, ये चैतन्य के संप्रदाय के नहीं अब सपन संप्रदाय है, भक्तिविनोद ठाकुर ने घोषित किया ऐसे लोगों को, और जो है जो चैतन्य का संप्रदाय है उसको अलग से मतलब उसको स्पष्ट करके दिखाया कि जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं वो कैसे होते हैं और कितने कठोर हैं इस मामले में। तो इस मामले में भक्तों को बहुत कठोर होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी,
धन्यवाद प्रिय जी। मेरा प्रश्न थोड़ा सा टॉपिक से अलग है, पूछ सकते हैं?
टॉपिक पर किसी का है प्रश्न? अच्छा, इनका है। हरे कृष्ण प्रभु,
आपने बताया चैतन्य महाप्रभु सन्यासी को उद्धार किया,
उसका उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने बहुत दयालु है, गौंडकाई बहुत दयालु है, फिर भी उसके यहाँ स्नान किया और उसके हाथ का पका हुआ भोजन तो नहीं लिया, एक कच्चा भोजन जैसे फल है दूध है उसका भोजन लिया, है ना। तो इस तरह से अब वो ज्ञान तो नहीं ग्रहण कर सका लेकिन फिर भी उसको जो है आगे चल करके उसकी चेतना शुद्ध होगी और उसको अवसर मिलेगा आगे उन्नति करने का अवसर मिलेगा।
जी, अभी हमारे मंदिर में जो चैतन्य चरितामृत में जो संवाद चल रहा है, रामानंद संवाद चल रहा है, तो उसमें से प्रश्न है मेरा कि ज्ञान मिश्र भक्ति और ज्ञान शून्य भक्ति में क्या अंतर होता है, तो आप इसको थोड़ा सा समझा।
देखिए, ज्ञान देखो ऐसा है कि ज्ञान शब्द से हम लोग बहुत भ्रमित होते हैं, ज्ञान शब्द का प्रयोग जो है शास्त्रों में किया गया है कई स्थानों में या प्रभुपाद ने किया है, तो कहीं पर ज्ञान की प्रशंसा भी की गई है, कहीं पर ज्ञान की निंदा की गई है। तो ज्ञान के जो है अलग अलग अर्थों में ज्ञान कभी प्रशंसा की जाती है, कभी निंदा की जाती है। भगवान कहते हैं कि तुम नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्रम यह विदते, कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। तो वहां पर ज्ञान का क्या मतलब है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो दिव्य ज्ञान है ना, कि हम कृष्ण की शरण है, हम कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण की महिमा, कृष्ण के गुण, इनका ज्ञान, तो ये तो दिव्य ज्ञान है, इसकी तो हमेशा प्रशंसा की जाती है। और दूसरा एक शुष्क ज्ञान है, ये कभी केवल ज्ञान कहा जाता है, केवल ज्ञान है ना, तो उसकी निंदा की गई है। जैसे बताया गया है कि नैष्कर्म अभी अच्युत भाव अर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। तो अच्युत भाव अर्जितम, भगवान की भक्ति के भाव के बिना वो ज्ञान जो है वैसे तो बिल्कुल वो है केवल ज्ञान है निरंजनम, तो वो ज्ञान जो है उसकी शोभा नहीं है। वो उस ज्ञान में जो है पूर्ण ज्ञानता नहीं, पूर्णता नहीं है उस ज्ञान में। उस ज्ञान में कुछ हिस्सा तो सही है कि भाई हम इस भौतिक संसार में बंधे हैं और हमें इससे निकलना है, छूटना है ना। लेकिन इसके आगे फिर जो है वो ज्ञान जो है बहुत अधूरा है कि हमारा वास्तव में भगवान के साथ क्या संबंध है और हमें भगवान से अपना संबंध जोड़ना है, तो वो नहीं है, हमें छूटना है, केवल इस संसार से हमें छूटना है। तो ज्ञान है इसमें, कुछ हिस्सा तो ज्ञान है इसमें, लेकिन कुछ हिस्सा क्या है, अज्ञान है। जैसे आप जेल से छूटना चाहते हैं, आपको ज्ञान हो गया कि जेल के अंदर हैं आप, आपको जेल के अंदर नहीं आना चाहिए, तो कुछ हिस्सा तो ज्ञान का है। ज्ञान जेल से छूटने के बाद आपका जो है असली संबंध क्या है अपने घर से, और अपना अपना जो है असली संबंध अपने परिवार से क्या है, आपका असली कार्य क्या है, आप अगर नहीं जानते हैं तो जेल से छूट गए बाहर निकले और सड़क में अब आप किसी से कोई संबंध नहीं है तो क्या करेंगे, जेब काटेंगे और फिर से जेल के अंदर आएंगे, क्योंकि आपको सही स्थिति आपको मिली नहीं। तो जेल से बाहर निकलने के बाद भी आपको अगर सही स्थिति का पता नहीं है कि आपकी असली स्थिति क्या है, तो आप क्या करेंगे, जेब कतरी करेंगे और फिर से जेल के अंदर आएंगे। उसी प्रकार से वो ज्ञान अधूरा है, तो उस ज्ञान की निंदा की जाती है। उपनिषदों में इस प्रकार का ज्ञान बताया गया है ना। तो हम जो है मान लीजिए कि समझ गए कि हम अविनाशी तत्व हैं, जीव तत्व अविनाशी है, वो जो है कभी नष्ट नहीं होता है, सब कुछ ज्ञान हो गया। लेकिन आपको जीव के ऊपर भगवान का अगर ज्ञान नहीं है और भगवान की कैसे हम सेवा कर रहे हैं, भगवान से कैसे हम अपने अच्छे संबंध बनाएं, तो वो फिर ज्ञान क्या हुआ, खतरनाक है ना। तो इसलिए ज्ञान कांड, उस ज्ञान कांड को जो है विषका बर्तन कहा गया है। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, ये दोनों विष से भरे हुए बर्तन है, कर्म कांड ज्ञान कांड। तो कर्म कांड में जो है भोगों की प्राप्ति होती है, लक्ष्य बनाया भोगों की प्राप्ति का, और ज्ञान कांड में जो है मुक्ति की प्राप्ति का लक्ष्य बनाया। लेकिन भगवान से अपना जो है संबंध नहीं जब तक पता चला तो वो शुद्ध ज्ञान नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए ज्ञान की कभी निंदा की जाती है, ज्ञान कर्मादिनावृतम, तो भक्ति जो है ज्ञान से ढकी नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर ज्ञान का मतलब वही है कि आप मुक्त होना चाहते हैं, भक्ति के द्वारा भी आप मुक्त होना चाहते हैं, है ना। तो ये जो है ज्ञान से भक्ति आपकी ढक गई, ये जो है मतलब असली ज्ञान नहीं। आप अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में तो मुक्ति अपने आप है, उसमें मुक्ति से ऊपर है भक्ति। लेकिन आपने सोचा कि भक्ति से ऊपर मुक्ति है, तो फिर वो ज्ञान इस प्रकार का जो ज्ञान है वो क्या है, शुद्ध ज्ञान थोड़ी है, शुद्ध ज्ञान नहीं। अगर आप भक्ति कर रहे हैं कि हम भक्ति करके हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे और फिर वो भक्ति जो है हम छोड़ देंगे, तो ये क्या है, सही ज्ञान तो नहीं। इस प्रकार का ज्ञान अगर कभी मतलब दिया जाता है तो इस ज्ञान की निंदा की जाती है, ठीक है ना।
ये मुक्ति सायुजी मुक्ति के लिए क्या है, सायुजी मुक्ति के लिए है।
हाँ, अगर हम जो है भगवान के साथ कोई संबंध ना मान करके और कोई मुक्ति पाना चाहते हैं तो वो सही ज्ञान नहीं है। फिर भी ज्ञान तो इसको कहा जाता है, ज्ञान तो कहा जाता है, इन ज्ञान के नाम पर इसमें कुछ अज्ञान है और बहुत बड़ा अज्ञान है कि नहीं। ज्ञान के नाम पर बहुत बड़ा अज्ञान उसके अंदर है, ठीक है ना। इसलिए इसकी निंदा की जाती है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधिका रमन की जय। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। गौर निताय की जय। कृष्ण बलदेव की जय।